ایک روایت کے اندر بیان کیا کہ فرمایا کہ مثلا اس طرح کا ایک مفہوم ہے، میں سے ایگزیکٹ الفاظ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہے، فرمایا کہ تمہیں ایمان کا کمال چاہیے، تین کام کرو، ایمان کا کمال چاہیے، تین کام کرو. مثال کے طور پر پہلا عنوان الانفاق فی الاقطار، سختی میں بھی صدقہ دیا کرو. اچھا میں صدقہ کب دیتا ہوں؟ میں اس وقت دیتا ہوں جب میرے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور جب نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہوں؟ تو کنجوسی دکھاتا ہوں. جب میرے پاس ہوتا ہے تو مثال کے طور پر میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، اور نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہوں؟ بچاتا ہوں. فرمانے نہیں، ایمان کامل یہ ہے کہ اقطار میں صدقہ دو، سختی میں صدقہ دو. آسانی میں صدقہ دینا تو وہ تو لالچ کے تحت بھی ہوتا ہے کہ خدایا پانچ دوں گا تو پچاس تو ویسے ہی کر دے گا. سختی میں دو. اب ایک اور آدمی مجھ سے کہہ سکتا ہے مولانا جس کے پاس ہے نہیں وہ کہاں سے دے گا؟ بھائی سختی میں دے، ہے نہیں کہاں سے دے؟ تو یہ کیا خدا نے کہا کہ صدقے میں روپیہ دو؟ یہ کب کہا؟ کہا صدقی صدقہ دو، سختی میں بھی دو. اب مثال کے طور پر میرے پاس سختی ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو میں ایک بات سوچتا ہوں، پیسہ نہیں ہے، ٹائم ہے، ٹائم ہے تو دوسروں کو وقت دے دوں، ان کی کوئی مدد کر دوں. اچھا میں سختی میں ہوں، بڑی سختی میں ہوں، اور خدا مجھ سے کہہ رہے سختی میں صدقہ دو، چلو تو بھائی دعا دے دو، دعا کرو. جب میں سختی میں ہوتا ہوں تو دوسروں کے بارے میں سوچ پاتا ہوں کیا؟ مشکل یہاں ہے، میں خود غرضی کرتا ہوں. بس یہ جو کہہ رہے ہیں صدقے میں صدقہ دو، سختی میں بھی دو، اس کا مطلب پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب مجھ سے خود غرض ہونے سے بچنا مانگ رہے ہیں. خود غرض مت بنو، اورینٹیشن نکالو اپنی. اورینٹیشن کیا ہونی چاہیے؟ اورینٹیشن دینے پہ ہونی چاہیے، نہ کہ لینے کے اوپر. اورینٹیشن دوسروں کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے اوپر. بس یہ جملہ دیکھیے کتنا عمیق ہو گیا اچانک. پہلے ہمیں لگ رہا تھا سختی میں صدقہ دو، یعنی مثلا میں افاؤنٹ کیلکولیٹ کر رہا تھا اگر میری تنخواہ 5,000 سے کم ہو گئی تو کیسے دوں گا، صحیح. اچانک مجھے پتہ چلا نہیں بھائی، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ایک مانگ رہے ہیں. وہ کیا؟ خود غرض مت بنو. سیلفش کیوں بنتے ہو؟ قربانی دینے والے انسان بنو. جب تم پہ سختی آئے تو دوسروں کا بھی سوچو. کس کی طرح؟ اب سارا کیریکٹر جو ہمیں نظر آتا ہے ہر طرح آتا ہے کربلا کے اندر. خود سختی میں اور حر کو پانی پلا رہے ہیں. سختی میں صدقہ دو، ایمان کا کمال سختی میں صدقہ دو. دوسرا پوائنٹ، میں ایک آدمی سے ملا، میرا دوست ہے، بہت اچھا دوست، میں دل کھول کے ملتا ہوں اس سے، میرا اچھا دوست ہے، دیکھتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، ملتا ہوں، بہت خوشی ہوتی ہے. اچھا میں ایک آدمی سے ملا جس سے میری کھٹ پٹ چل رہی ہے، تو جیسے ہی میں اس کو دیکھتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دل میں مجھے یوں لگتا ہے جیسے اسفنج سکڑنا شروع ہو گیا ہے. جیسے اسفنج یوں ہو گیا، ایک دم سے اندر جاتا ہے تو دل لگتا ہے یوں ہو گیا. تو بجائے یہ کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں چہرہ کھلا ہو، میرا چہرہ مرجھانے لگتا ہے، دل دبنے لگتا ہے. اچھا منافقت کے جو استاد ہوتے ہیں وہ اس کو چہرے کو پھر بھی بچا لیتے ہیں. جو منافقت کے استاد ہوتے ہیں وہ اندر کو اسفنج ان کا سکڑ چکا ہوتا ہے، اوپر سے چہرہ ان کا پھول کی طرح کھلا ہوا ہوتا ہے. یہ تو ہو گئے بڑے جو استاد ہوتے ہیں، سیلز مین ٹائپ کے لوگ. ایک پروفیشنل مسکراہٹ ان کے چہروں پر ہوتی ہے. اچھا یہ سب پکڑی جاتی ہے، جو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا جو چہرے شناس ہوتے ہیں وہ سب پکڑ لیتے ہیں. چہرے شناس چھوڑ دیں، سب سے اچھی پہچان کون کرتے ہیں؟ بچے کرتے ہیں. بچے پکڑ لیتے ہیں کب یہ دو نمبر ہے. بچے کو کبھی آپ کسی سیلز مین سے اظہار محبت کرتے نہیں دیکھیں گے. بچہ خلوص کو اندر سے پہچانتا ہے، اندر سے وہ سمجھ جاتا ہے یہ مصنوعی ہے، یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، معاملہ کچھ اور ہے اس کا. تو کیا ہوتا ہے کہ دوسرا پوائنٹ انہوں نے ہم سے کہا، کیا تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک سب سے کھل کے نہیں ملو گے. سب سے کھل کے ملو. अच्छा किसी को देखकर मेरा तो दिल कुड़ता है, इससे कैसे खुल के मिलूं? इससे सोच के मिलो कि बंदे खुदा है जो गलतियां कर रहा है, अल्लाह का बंदा होने के नाते दिल खोल के मिलूंगा, मैं क्यों अपना दिल खराब करूं। भाई आप एक तसव्वुर फरमाइए, मसलन मेरे पास इस लिबास में भी काफ़ी जेबें हैं, अब अगर उन जेबों में दो तीन सड़े हुए अमरूद मैंने रखे हुए हैं और काफ़ी वक्त से रखे हुए हैं और मैंने ट्रिक ये की है कि आपको बदबू नहीं आ रही है, सवाल ये है कि आपको तो बदबू नहीं आ रही, ये जो सड़े हुए मेरी जेब में काफ़ी वक्त से पड़े हैं, ये मेरा क्या होगा है? और अभी तो मैंने जेब कहा था, अगर वो किसी भी तरह सड़े हुए मेरे अंदर पड़े हों और वो पेट में ना पड़े हों जो शायद कभी निकल जाए, ये दिल में पड़े हों, पेट का फंक्शन ज़्यादा ज़्यादा ख़राब हुआ तो ज़्यादा मसला नहीं होगा, ज़्यादा ज़्यादा मरूँगा, लेकिन दिल का फंक्शन ख़राब होता है जब कल्ब का, तो ये अबदी ज़िंदगी को ठिकाने लगा देता है। अच्छा मेरे उस सारे गंदे अमरूद उस अबदी ज़िंदगी को ठिकाने लगा रहे हैं, क्यों? मैं बोक्स लिए बैठा हूँ, मैं कीना लिए बैठा हूँ, मैं दुश्मनियाँ लिए बैठा हूँ, हसादतें लिए बैठा हूँ, और ये कहाँ लिए बैठा हूँ? उसी कल्ब मुक़द्दस में जिसमें खुदा ने कहा था इल्ला मन अतल्लाह बिकल्ब सलीम, बस वो कामयाब होगा जो मेरे पास कल्ब सलीम के साथ आएगा। उस कल्ब सलीम में मैंने बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ सड़ी हुई गली हुई चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं, खुदा कह रहा है ये मत करो, दिल अपना कुशादा करो, दिल साफ करो, चेहरा खोल लो, सब के साथ खुले हुए दिल से मिलो, ये हमसे डिमांड कर रहा है। अच्छा मैंने अर्ज़ किया दुश्मन से कैसे खुले हुए दिल से मिलो, इस सुलह के दिन है तो अल्लाह का बंदा, अल्लाह के बंदे के नाम पर मिलो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, चार गलतियाँ कर रहा है, हिदायत देने की कोशिश करूँगा, दुश्मनी क्यों करूँ, क्यों दुश्मनी? हत्ता अब ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, ये बड़ा अजीब मामला है, अल्लाह के रसूल ने अपने दुश्मनों के साथ भी दुश्मनी की क्या? उन्होंने फरमाया मैं हूँ रहमतुन लिल आलमीन, दोस्त हो या दुश्मन हो? सय्यदुश्शुहदा अपने दुश्मनों के साथ दुश्मनी कर रहे थे क्या? नहीं, एक लहजा भी नहीं, दुश्मनों के साथ भी हमदर्दी कर रहे थे, बच जाए किसी तरह बच जाए, हाँ अपने आमाल के नतीजे में जहन्नम में जाएगा इसका मसला है, सय्यदुश्शुहदा तो इसको जहन्नम से बचाना चाह रहे थे, वरना तसव्वुर फरमाएं जो बनी असद के नाम पे बयान मौजूद है कि दूर चले जाओ, इतनी दूर जाओ कि मेरी आवाज़ ना आए तुम लोगों को, नहीं साथ देते तो ना दो, ये हमदर्दी नहीं है, आई नहीं हमदर्दी, फरमाया दूर जाओ आवाज़ ना आए। तो अब दो पॉइंट हमें मिल गए, पाकीज़ा ज़िंदगी हासिल करनी है क्या करो, नंबर एक सख्ती में सदका दो, और सदके सख्ती में सदका देने का मतलब क्या हुआ, वही कि खुदगर्ज़ मत बनो, खुदगर्ज़ मत बनो, दूसरों की सोचो, दूसरों को अच्छाई दो, जितना दोगे तुम्हें मिलेगा, ये कहले था कानून है बड़ा तूलानी कानून, यहाँ पे वक्त नहीं। दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात ही खुल के मिलो, चेहरा खुला हुआ हो, चेहरा खुला हुआ क्या मतलब, वो सेल्समैन वाला चेहरा खुला नहीं, अंदर से बाहर सब एक जैसा, चेहरा खुला दिल भी खुला। जब हमें दुश्मनों से मुनाफिकत करनी पड़े तो शायद कोई वजह हो, वो कौन सा बदबख्त टाइम है जब दोस्तों से भी मुनाफिकत करनी पड़ती है, तसव्वुर करें ये कैसी ज़िंदगी है, अपने बच्चों से मुनाफिकत करनी पड़ रही है नाऊज़ बिल्लाह ताला, ये कैसी ज़िंदगी है, ये हयात तैयबा है, ये पाकीज़ा ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी है, खुली ज़िंदगी है, दिल खोल के मिलता है इंसान, खुश होता है तो खुश होता है, ना कहे कि खुश होता है तो वो चेहरे के ऊपर खुशी लाते हैं अंदर गालियाँ बकरा होता है, ये कहाँ की ज़िंदगी है। दो बातें और तीसरी बात एक और फरमाई, वो बहुत ही अजीब नुक्ता है, वो क्या है, वक्त नहीं मैं उसकी तशरीह अर्ज़ करता हूँ, फरमाया अपने नफ्स के साथ इंसाफ करता हूँ, क्या मतलब अपने नफ्स के साथ इंसाफ करता हूँ, आप ख़ुद तसव्वुर फरमाएं, इंसान सोने को सोना समझे तो ये इंसाफ है, लेकिन अगर कोई सोने से लोहे का काम ले भैया ना इंसाफी है, सोने से लोहे का काम थोड़ी लेना चाहिए, सोने से सोने का काम लेना चाहिए। अगर मिसाल मैं इसकी मिसाल देता हूँ, मिसाल किसी के पास सोने का एक तार था, उसने क्या किया, वो कपड़े टांगने के लिए अलंगनी बना दी उसकी, ओ भाई सोने के तार से अलंगनी थोड़ी बनती है, वो लोहे का तार लगाओ, उसके अंदर कोई रस्सी लगाओ जिसके ऊपर गीले कपड़े टांगते हैं ताकि खुश्क हो जाए। ये तुमने सोने का तार लगा दिया यहाँ पे जिसके ऊपर गीले कपड़े टांग रहे हो, ये क्या हिमाकत है? अपने नफ्स के साथ इंसाफ करें। क्या करें? अपने आप से पूछे, ये जो मैं हरकत कर रहा हूँ ये मेरे करने के काबिल है? ये जो खुदा ने मुझे नफ्स दिया है ये उसकी शान में है जो मैं कर रहा हूँ? नफ्स के साथ इंसाफ करें, इसकी एक कदर व कीमत है। खुदा ने मुताल इसको फिर मिन रूही ताबीर किया, जिसको खुदा ने इतने रिगार्ड्स दिए हैं वो अख्तबारक अल्लाह हसन अल खालिकीन, उसके साथ इंसाफ ये है, ये करूँ ये इंसाफ है। बड़ा नफीस एक वाकया बयान करते हैं, कहते हैं अबू अली सीना एक जगह से गुजर रहे थे। अबू अली सीना वो कहाँ के, यानी जिसे कहते हैं मुअल्लिम, ऐसे सिखाने वाले दुनिया को जिसका पता नहीं, उसने किसी से सीखा भी नहीं था। अबू अली सीना का हिसाब किताब ये कि सीखा किसी से नहीं था और दुनिया का हर साइंस आता था उनको, और वो ख़ुद बयान करते थे कि मसलन मैं जाता था, अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी मैं जाता था मस्जिद में, दो रकत नमाज पढ़ता था मुझे समझ में आ जाता था। तो वो इस टाइप के थे अबू अली सीना, बहुत गैर मामूली इंसान इस मामले के अंदर। लेकिन एक मुश्किल के साथ थी, वो क्या, अपनी कुछ इन मजबूरियों की वजह से, मसलन मुझे किताबें चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बादशाहों के साथ रहते थे। तो एक दफ़ा इसी तरह बादशाह की बीवी एक गाड़ी के अंदर जा रहे थे, उस ज़माने में तो बड़ी गाड़ी तमतराक जो था वो कुछ ही लोगों के पास होता था, तो वहाँ से गुजर रहे थे तो देखा एक आदमी खड़ा है। उस ज़माने में जो ये सीवरेज की लाइंस नहीं होती थी, तो हर घर के बराबर में एक कुआं होता था, ये सारा जो वेस्ट होता था वो उस कुएँ के अंदर चले जाता था। वो हमने भी, मुझे याद है एक दफ़ा कुम्मे किराए पर लिया घर, तो उसके कुआं हमारे सामने ही बना था कि वेस्ट सारा उस कुएं के अंदर जाता था। और वो कुआं जो होता था वो मिसाल के तौर पर मतलब 5-10 साल में, 5-7 साल में, डिपेंडिंग के वो कितना बड़ा आपने खोदा और कितना आपने उसमें वेस्ट डाला, वो भर जाता था। अब जो भर जाता था तो बंदा उतर के उसमें से गंदगी निकाल के फेंकता था। एक बंदा उतरता था उस गंदगी में, जो टॉयलेट की गंदगी होती थी जो सड़ी कई साल, उसमें वो उतरता था, बाल्टी बाल्टी भर के निकाल कर उसको फेंकना होता था। इस बंदे को कहते थे कन्नासा। अब आप इसको पता नहीं आप जमादार कहें या जो कुछ भी कहें, अब ये जो पेशा होता था ना, ये दुनिया का, उस जमाने की दुनिया का कसीफ तरीन पेशा था, कि उसके वजूद में वही बदबू आने लगती थी उसके जिस्म में से, और ये था वो था। आजकल तो वहाँ पे क्या होता है, अभी भी हैं कुम में कुछ जगहों के ऊपर, तो वो उन्होंने पाइप्स लगा देते हैं, वो आते हैं उन्होंने उस कुएँ से एक पाइप जो है कनेक्शन दिया हुआ होता है, जैसे बाहर सील होता है, फिर यहाँ पे भी ऐसे होता है, बस वो लगाते हैं शक्कर निकाल के लेकर हेड वैक्यूम कर लेते हैं उसको। हाँ, तो वहाँ पर वो जनाब अली करीम ज़माने में बंदा उतरता था निकालता था, उसको कहते थे कन्नासा। और कन्नासे का काम तो आपको समझ में आ गया कि क्या था। अबू अली सीना एक जगह से गुजर रहे थे, देखा एक कन्नासा खड़ा है और एक शेर पड़ रहा है और कह रहा है, ए नफ्स देख मैंने तुझे बेइज्जत नहीं होने दिया। कन्नासा ये काम करने वाला और खड़ा है और कह रहा है, देख ए नफ्स मैंने तुझे बेइज्जत नहीं होने दिया। अबू अली सीना रुक गए, कहने लगे तेरा शोल क्या है, पेशा क्या है, मालूम था क्या है? कहने लगा ये, कहा ये कि क्या शेर पड़ा है, बेइज्जत नहीं होने दिया, और क्या होना था? कहने लगा और ये होना था कि बादशाहों के सामने सर झुकाता, और ये होना था जो मैंने नहीं किया तूने किया। इंसाफ अपने नफ्स से करो, जलील होने की क्या ज़रूरत है? अपने नफ्स का एक स्टैंडर्ड बनाओ, उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आओ। बकौल उस कन्नासे के, गंदगी उठा लो, गुलामी मत करो। गंदगी उठा लो कोई मसला नहीं, गुलामी नहीं करो, आज़ाद इंसान बनो। अब ये हम सबको देखना पड़ेगा भाई, नफ्स के साथ इंसाफ। अब बदतरीन गुलामी, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बदतरीन गुलामी ख्वाहिशात की गुलामी, बदतरीन गुलामी ख्वाहिशात की गुलामी। और अगर कोई ख्वाहिशात की गुलामी में पड़े तो कुत्ते की गुलामी भी झेलनी पड़ जाएगी, फिर झेलनी पड़ जाती है, हर एक की गुलामी झेलनी पड़ती है जब कोई ख्वाहिशात की गुलामी में फंस जाता है। इंसाफ करें अपने नफ्स के साथ, एक स्टैंडर्ड बनाए, उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आएगा। तो बड़ा ये जो रिवायत है, ये बड़ी अजीब नफीस रिवायत, कि इसने ऐसे मेयार दिए ज़िंदगी के जो इंसान को बुलंद कर दें अचानक। ये फरमाया कि नंबर एक, अल इन्फाक फिल अख्तार, सख्ती में सदका दे। दूसरा फरमाया क्या, कि लोगों के साथ खुले दिल से मिले, लोगों के साथ खुले दिल से मिले। अब वो खुले दिल से मिलने का मैंने आपको ताबीर बता दी किस तरीके से, सिर्फ चेहरा काफ़ी नहीं है, बस दिल खुला हुआ हो। और तीसरी बात ये हुई कि वो अपने नफ्स के साथ इंसाफ करे, नफ्स के साथ इंसाफ करे। अगर कोई ऐसी ज़िंदगी गुजारता है, देखने में सख्ती में होता है, अंदर से मज़े में होता है, अंदर से वो इंजॉय कर रहा होता है कि मुझे क्या कमाल मिल गया, बिल्कुल वही कन्नासे वाला आलम कि बुअली सीना, हत्ता बुअली सीना बहुत बहुत बुलंद नाम है, बुअली सीना का नाम बहुत बुलंद है। और मैं दुआ ये करता हूँ कि ये वाक़या हम लोगों को गलत पता हो कि बुअली सीना का है, अल्लाह कह रहे कि किसी बुअली सीना के दुश्मन ने गढ़ा हो ये वाक़या, क्योंकि बुअली सीना का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद मकाम है। तो इतने से कन्नासे के हाथों ये जुमला फैलाया हुआ मैच नहीं करता है बुअली सीना की शान में, तो इंशाल्लाह गलत होगा लेकिन मशहूर है कि ऐसा ही हुआ था। तो खुदा चाहते हैं हम बुलंद हों, हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हयात तैयबा नसीब हो, और उस हयात तैयबा के रास्ते में जितनी रुकावटें हैं वो खुदा हमसे दूर करवाना चाहता है, कहते दूर करो इन सबको, मैं आपको बुलंद करूँ। माशाल्लाह देखिए हमारे सामने इतनी मिसालें परवरदिगार आलम ने रखी हैं।